एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम मिलकर एक बेहद दिलचस्प और जरूरी किताब की गहराइयों में उतरेंगे।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो शायद हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है, अपना जीवन साथी चुनना। ये सिर्फ दिल का मामला नहीं बल्कि दिमाग का भी है। और आज हमारे पास है डॉक्टर टाई टैशिरो की किताब द साइंस ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब हमेशा खुश रहने का विज्ञान।
हाँ।
सवाल ये है कि क्या प्यार और रिश्तों के मामले में विज्ञान हमारी मदद कर सकता है? आजकल तलाक की दरें इतनी ज्यादा हैं, रिश्तों में इतनी नाखुशी है, कहीं हम कुछ बुनियादी गलती तो नहीं कर रहे?
बिल्कुल, यही सवाल इस किताब को इतना जरूरी बना देता है। ये पारंपरिक सलाह से, जो अक्सर बस किस्से कहानियों या निजी अनुभवों पर होती है ना, उससे हटकर है।
अच्छा।
हाँ, ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के दशकों के शोध पर आधारित है। ये हमें एक ज्यादा, आप कह सकते हैं, समझदार, ज्यादा असरदार तरीका बताती है। इससे पहले कि हम किताब के अंदर जाएं, लेखक डॉक्टर टे टशीरो के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। वो एक सामाजिक वैज्ञानिक हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और मनोविज्ञान में PhD हैं। कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके हैं और उनका काम मुख्य रूप से रिश्तों, सामाजिक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत खुशहाली पर ही केंद्रित रहा है।
दिलचस्प। पर ऐसे तो कई किताबें और एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर टैशिरो की बात में ऐसा क्या खास है? मतलब हम उन्हें क्यों सुने? क्या चीज उनके नजरिए को अलग बनाती है?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जो मुश्किल वैज्ञानिक शोध होता है, जैसे एम्पिरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पीयर रिव्यूड स्टडीज, उसको बहुत ही सरल, समझने लायक और व्यावहारिक सलाह में बदल देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि क्यों होता है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। उनका नजरिया पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है, मतलब अटकलों या जो बस पॉपुलर धारणाएं हैं उन पर नहीं।
यानी इमोशनल टॉपिक पर भी लॉजिक और साइंस।
एग्जैक्टली। वो प्यार जैसे भावनात्मक विषय को भी तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। उनकी एक और किताब है ऑकवर्ड, वो भी दिखाती है कि वो इंसानी व्यवहार को कितनी बारीकी से समझते हैं।
अच्छा, तो ये वैज्ञानिक नजरिया है प्यार को समझने का। चलिए अब किताब पर आते हैं, द साइंस ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर। इसका मुख्य सार क्या है? ये पाठक को क्या देना चाहती है?
इसका जो मुख्य मकसद है वो है प्यार और साथी चुनने से जुड़े कई लोकप्रिय मिथकों को तोड़ना।
मिथक जैसे?
जैसे ये सोचना कि कोई सोलमेट है जो हमारे लिए बना बनाया कहीं बैठा है, या ये कि भाई सच्चा प्यार हो गया तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। किताब कहती है कि ये सोच हमें अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। इसकी जगह ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल सबूतों पर आधारित रणनीति पेश करती है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं चाहते, बल्कि एक लंबा, संतोषजनक और स्थिर रिश्ता बनाना चाहते हैं।
तो ये मिथकों को तोड़कर एक नई राह कैसे दिखाती है? मतलब पाठक इस किताब के साथ कैसी यात्रा करता है?
किताब पहले तो हमें आईना दिखाती है। ये बताती है कि साथी चुनने के हमारे जो मौजूदा तरीके हैं वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं, चाहे वो परियों की कहानियों वाले आइडियल हों या हमारी अपनी दिल की आवाज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। फिर ये उन मनोवैज्ञानिक झुकावों, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, उनको उजागर करती है।
जैसे?
कोई उदाहरण?
हाँ,
जैसे एक बहुत आम बायस है, हेलो इफेक्ट। जब हम किसी के बाहरी रूप, रंग से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो अंदर से भी उतना ही अच्छा, दयालु और समझदार होगा, जबकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं होता।
तब इससे आगे बढ़कर कोई ठोस समाधान भी बताती है?
बिल्कुल। समस्या की जड़ तक जाने के बाद किताब एक साफ और वैज्ञानिक रणनीति पेश करती है। ये कहती है कि हमें अपनी पसंद को कुछ खास, रिसर्च समर्थित गुणों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसे गुण जो लंबे समय तक चलने वाली खुशी और स्थिरता से जुड़े पाए गए हैं। असल में ये हमें सिखाती है कि प्यार की तलाश को किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय इसे एक सोच समझकर, जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे बनाया जाए।
मतलब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना।
एग्जैक्टली, ये हमें वो ताकत देती है।
चलिए इस सोच समझ वाली प्रक्रिया को थोड़ा और खोलते हैं। किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि साथी चुनने में हमारा रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। ये थोड़ी निराशाजनक बात नहीं?
हाँ, ये सीधे मुद्दे पर आती है। आंकड़े यही दिखाते हैं, जैसे अमेरिका में पहली शादियों में तलाक की दर करीब 50% है, और जो शादियां टिक भी जाती हैं उनमें भी बहुत से लोग खुश नहीं हैं।
50% बहुत ज्यादा है वो।
हाँ, है ना। लेखक इस हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी हमेशा खुशी खुशी रहें वाले मिथक पर सवाल उठाते हैं, जो हमें सिखाता है कि बस सही इंसान मिल जाए फिर सब कुछ जादुई तरीके से ठीक हो जाएगा। किताब कहती है कि ये सोच ना केवल अवास्तविक है बल्कि हमें थोड़ा निष्क्रिय भी बना देती है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं ये मानकर कि अगर रिश्ता सही होता तो अपने आप चलता।
ये बात तो सोचने वाली है। और फिर किताब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है कि हम अक्सर गलत लोगों की तरफ क्यों खिंच जाते हैं। यहाँ फेटल अट्रैक्शन यानी घातक आकर्षण का जिक्र आता है। सुनने में खतरनाक लगता है, ये है क्या असल में?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। घातक आकर्षण का मतलब है कि जो गुण हमें शुरुआत में किसी में बेहद आकर्षक लगते हैं वही गुण बाद में रिश्ते के लिए जहर बन जाते हैं।
अच्छा,
कैसे? जैसे कोई इंसान जो शुरू में बहुत जोशीला, रोमांचक और थोड़ा अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल लगे वो शायद आकर्षक लगे, लेकिन लंबे समय में यही गुण अविश्वसनीयता, अस्थिरता या गैर जिम्मेदारी के रूप में सामने आ सकते हैं। या कोई जो बहुत आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखे वो बाद में कंट्रोल करने वाला या दूसरों की भावनाओं का ध्यान न रखने वाला साबित हो सकता है।
मतलब जो चीज शुरू में पसंद आई वही बाद में नापसंद बन गए। और इसमें शायद हमारे दिमाग के वो शॉर्टकट, वो पूर्वाग्रह जैसे हेलो इफेक्ट भी भूमिका निभाते होंगे, है ना?
निश्चित रूप से हेलो इफेक्ट हमें बाहरी चमक दमक देखकर अंदरूनी गुणों का अंदाजा लगाने को उकसाता है। इसी तरह हम अक्सर तात्कालिक जुनून या रोमांस को लंबी अवधि की शांति और स्थिरता पर तरजीह दे देते हैं।
हाँ, शॉर्ट टर्म गेन।
बिल्कुल, हमारा दिमाग तेज फैसले लेना चाहता है और इस चक्कर में हम उन गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में एक स्थायी रिश्ते के लिए जरूरी हैं। किताब उदाहरण देती है कि कैसे बुद्धिमान लोग भी बार बार ऐसे साथियों की तरफ खींचते हैं जो शायद देखने में आकर्षक हों पर भावनात्मक रूप से अस्थिर या आत्मकेंद्रित, नार्सिस्टिक हों। हम असल में छोटी अवधि के फायदे के लिए लंबी अवधि का नुकसान का सौदा कर बैठते हैं।
ठीक है, तो अगर हमारी सहज प्रवृत्ति हमें धोखा दे सकती है, पूर्वाग्रह हमें भटका सकते हैं और घातक आकर्षण हमें फंसा सकता है, तो फिर सही रास्ता क्या है? किताब एक दिलचस्प तरीका सुझाती है, तीन इच्छाएं, 3 wishes। ये क्या है?
ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक मेटाफर है। लेखक कहते हैं कि देखिए, कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपने साथी में हर मनचाहा गुण नहीं पा सकते।
ये तो सच है।
तो हमें चुनना होगा, प्राथमिकता तय करनी होगी। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलादीन के चिराग की तरह सिर्फ 3 इच्छाएं हैं जिन्हें आप अपने होने वाले साथी के गुणों पर खर्च कर सकते हैं। आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे?
सिर्फ 3 इच्छाएं?
हाँ, ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम सोचें कि हमारे लिए सच में लंबे समय के लिए क्या मायने रखता है।
ये तो मुश्किल चुनाव है। हमारी लिस्ट तो अक्सर बहुत लंबी होती है। अच्छा दिखना, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, मजाकिया स्वभाव। तो लोग आमतौर पर अपनी ये इच्छाएं कहाँ बर्बाद करते हैं और लेखक किन गुणों को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं?
बहुत सही सवाल। लोग अक्सर अपनी ये कीमती इच्छाएं उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिनका असर समय के साथ कम हो जाता है या जो स्थायी खुशी की गारंटी नहीं देते।
जैसे?
जैसे कि अत्यधिक शारीरिक आकर्षण जो समय के साथ बदलता है, या बहुत ज्यादा पैसा और सामाजिक रुतबा जो जरूरी हो सकता है पर एक सीमा के बाद खुशी नहीं बढ़ाता। लेखक का तर्क है कि हमें अपनी इच्छाएं उन गुणों पर लगानी चाहिए जो शोध में लगातार खुशहाल और स्थिर रिश्तों से जुड़े पाए गए हैं। ये वो गुण हैं जो रिश्ते की नींव बनते हैं।
तो वो कौन से जादुई गुण हैं जिन पर हमें अपनी पहली 2 इच्छाएं लगानी चाहिए? ये जानना तो बहुत जरूरी है।
पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण इच्छा जिस पर लेखक सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है कम न्यूरोटिसिज्म।
न्यूरोटिसिज्म?
हाँ, जिसे हम उच्च भावनात्मक स्थिरता भी कह सकते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा साथी चुनना जो आमतौर पर शांत रहता हो, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंतित, दुखी या गुस्सा ना होता हो।
अच्छा।
और जो जिंदगी के उतार चढ़ाव और तनाव का सामना बिना बिखरे कर सकता हो। शोध साफ दिखाते हैं कि साथी की भावनात्मक स्थिरता शादी के लंबे चलने और उसमें खुशी पाने का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, प्रेडिक्टर है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे साथी के साथ कितनी आसान होगी। दूसरी इच्छा, खर्च होनी चाहिए उच्च सहमति पर।
हाई एग्रीएबलनेस।
सहमति मतलब एग्रीएबल होना।
हाँ।
यानी एक ऐसा साथी जो स्वाभाविक रूप से दयालु हो, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता हो, सहयोगी हो, भरोसेमंद हो और जिसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो। किताब कहती है कि प्यार भरे रिश्ते की असली करेंसी, मुद्रा, बड़े बड़े रोमांटिक इशारे नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में दिखाए गए ये छोटे छोटे दयालु और सहयोगात्मक कार्य हैं। यही वो गुण हैं जो रिश्ते को रोज पोषण देते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं।
भावनात्मक स्थिरता और सहमति, ये तो सुनने में बहुत आधारभूत लगते हैं, पर शायद हम इन पर उतना ध्यान नहीं देते। और तीसरी इच्छा का क्या, उसे कहाँ इस्तेमाल करें?
रेड फ्लैग से बचने के लिए करें जो रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
जैसे?
जैसे ऐसा साथी जो हमेशा अत्यधिक नवीनता या रोमांच की तलाश में रहता हो, एक्सट्रीम नॉवल्टी सीकिंग, उसमें बेवफाई का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसी तरह असुरक्षित जुड़ाव शैली, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, जैसे वो जो बहुत ज्यादा बचने वाले हों, अवॉइडेंट, या रिश्ते में हमेशा बहुत ज्यादा चिंतित हों, एंग्शियस रहते हों।
ओके।
शोध बताते हैं कि सुरक्षित जुड़ाव शैली, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग जो नज़दीकी से सहज होते हैं और भरोसे पर आधारित रिश्ते बनाते हैं, वो स्वस्थ और टिकाऊ रिश्तों के लिए बेहतर साथी साबित होते हैं। तो तीसरी इच्छा का इस्तेमाल ऐसे डील ब्रेकर से बचने में किया जा सकता है।
ये तो हो गई सही साथी चुनने की रणनीति।
बिल्कुल।
पर जैसा कि कहते हैं, शादी या रिश्ता सिर्फ शुरुआत है, असली काम तो उसे निभाना है। क्या किताब इस बारे में भी कुछ कहती है?
बिल्कुल। यहीं पर लेखक दो तरह की मानसिकता, माइंडसेट का जिक्र करते हैं जो रिश्ते को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहली है डेस्टिनी माइंडसेट। हाँ, ऐसे लोग मानते हैं कि रिश्ते या तो ऊपर से बनकर आते हैं या नहीं। अगर कोई मुश्किल आती है तो वे मान लेते हैं कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे और कोशिश करना छोड़ देते हैं।
हार मान लेते हैं।
बिल्कुल। दूसरी मानसिकता है ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि रिश्ते मेहनत, समझदारी, सीखने और साथ मिलकर प्रयास करने से बनते और सुधरते हैं। वे चुनौतियों को रिश्ते को तोड़ने वाली चीज नहीं, बल्कि साथ मिलकर सीखने और रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर मानते हैं।
अच्छा।
जाहिर है, जिन जोड़ों में ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं और उनके रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं।
ये डेस्टिनी और ग्रोथ माइंडसेट वाली बात तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है, पर रिश्तों में शायद और भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से निकलने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण संदेश या सीख क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और बुनियादी संदेश है रोमांटिक आदर्शवाद से ज्यादा तर्कसंगतता को महत्व देना।
मतलब रैशनैलिटी ओवर रोमांटिक आइडियलिज्म।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं जरूरी नहीं, बल्कि ये कि जीवन के इतने बड़े फैसले में हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ तर्क, सबूत और वैज्ञानिक समझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ दिल की आवाज पर आंख बंद करके भरोसा करना काफी नहीं है।
और दूसरा शायद वो तीन इच्छाओं वाला सिद्धांत जो हमें प्राथमिकता तय करना सिखाता है।
बिल्कुल। The importance of prioritization।
हम सब कुछ नहीं पा सकते, इसलिए हमें समझदारी से चुनना होगा कि कौन से गुण वास्तव में लंबे समय की खुशी और स्थिरता के लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय उन चीजों के जो सिर्फ ऊपरी तौर पर आकर्षक लगती हैं।
बिल्कुल। और इससे जुड़ा तीसरा अहम संदेश है, व्यक्तित्व ही स्थायी प्यार की नींव है। मतलब पर्सनालिटी एज द बेडरॉक ऑफ लास्टिंग लव। बाहरी चीजें जैसे लोग, पैसा, सामाजिक स्थिति, ये समय के साथ बदल सकती हैं या उनका महत्व कम हो सकता है।
सही बात है।
लेकिन साथी का मूल स्वभाव, उसकी भावनात्मक स्थिरता, उसकी दयालुता, सहमति, ये वो चीजें हैं जो रिश्ते को सालों साल टिकाए रखती हैं। यही असली बुनियाद में।
और वो घातक आकर्षण वाली चेतावनी भी बहुत महत्वपूर्ण है,
रोमांच और खुशी के बीच का अंतर समझना।
हाँ, डोंट कन्फ्यूज एक्साइटमेंट विद हैप्पीनेस। जो चीज शुरू में बहुत ज्यादा ड्रामा या रोमांच पैदा करती है, जरूरी नहीं कि वो स्थायी खुशी भी दे। अक्सर शांति, स्थिरता, विश्वसनीयता और दयालुता लंबे समय में ज्यादा संतोषजनक साबित होती हैं। ये शायद कम नाटकीय हों, पर ज्यादा टिकाऊ है।
हाँ, और अंत में ये किताब हमें सूचित चुनाव के जरिए सशक्तिकरण, मतलब एम्पावरमेंट थ्रू इन्फॉर्म्ड चॉइस का संदेश देती है। हम प्यार के मामले में सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं है। ज्ञान और समझ के साथ हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने रोमांटिक भविष्य को ज्यादा सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। और एक और प्यारी सी बात जो किताब कहती है, साधारण ही शानदार है। द मंडेन इज मैग्निफिसेंट।
अरे वाह।
असली गहरा प्यार रोजमर्रा के छोटे छोटे साधारण से लगने वाले दयालु और सहायक पलों में पनपता है, न कि सिर्फ बड़े बड़े रोमांटिक इशारों में।
अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में देखें तो ये बातें और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। हमारे यहाँ शादी के लिए अक्सर गुणों की एक लंबी लिस्ट होती है, रंग, रूप, कद, नौकरी, परिवार की हैसियत, लेकिन इन गुणों पर भावनात्मक स्थिरता, दयालुता, सहमति शायद उतना जोर नहीं दिया जाता।
बिल्कुल।
जबकि किताब के अनुसार यही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा। और वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात भी, हमारे समाज में कई बार रिश्तों की समस्याओं को नसीब या कर्म मानकर स्वीकार कर लिया जाता है, ये सोच कि अब तो जो है यही है, कुछ बदल नहीं सकता।
हाँ, ये बहुत कॉमन है।
जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि रिश्तों पर काम किया जा सकता है, उन्हें सुधारा जा सकता है अगर दोनों साथ ही मिलकर प्रयास करें। ये एक ज्यादा उम्मीद जगाने वाली और सक्रिय सोच है।
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना जरूरी है।
बिल्कुल। पहला कदम तो यही हो सकता है कि हम अपनी डेटिंग या साथी चुनने की प्राथमिकताएं बदलें, सतही चीजों की लिस्ट छोटी करें और व्यक्तित्व के इन गहरे गुणों, भावनात्मक स्थिरता और सहमति, दयालुता पर ज्यादा ध्यान दें।
कैसे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें?
जब किसी से मिलें तो सिर्फ ये ना देखें कि वो कितने आकर्षक या सफल हैं, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि वे दबाव में कैसे रहते हैं, दूसरों के प्रति कितने दयालु हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें।
और आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत आम है, तो प्रोफाइल देखते समय सिर्फ तस्वीरों या हॉबीज पर ना अटकें।
सही। ध्यान दें कि व्यक्ति ने अपने बारे में क्या लिखा है, क्या उनकी भाषा में बहुत ज्यादा नकारात्मकता, ये शिकायत है, ये कम सहमति या ज्यादा न्यूरोटिसिज्म का संकेत हो सकता है, क्या वे सहयोग, वफादारी, दयालुता जैसी बातें करते हैं।
शुरुआती मुलाकातों या डेट्स का मकसद भी बदलें, सिर्फ स्पार्क या केमिस्ट्री महसूस करने के बजाय जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान दें।
बिल्कुल। देखें कि वे दूसरों के साथ, जैसे रेस्टोरेंट के स्टाफ या अजनबियों के साथ, कैसा व्यवहार करते हैं, या उनकी सहमति अग्रीएबिलिटी का अच्छा पैमाना है। जब वे किसी मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बात करें तो सुने कि वो उसे कैसे लेते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इससे उनकी भावनात्मक स्थिरता का पता चल सकता है।
और अपने खुद के पैटर्न को पहचानना भी बहुत जरूरी है। अगर हम पाते हैं कि हम बार बार एक ही तरह के घातक आकर्षण वाले लोगों की तरफ खिंचते हैं, तो उन शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना सीखें।
हाँ, और जब वो दिखें तो भावनाओं में बहने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें। जागरूक होना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।
और जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी ये किताब उपयोगी है।
बिल्कुल। ये उन्हें अपने रिश्ते की समस्याओं को एक नई नज़र से देखने में मदद कर सकती है। हो सकता है लगातार होने वाले झगड़ों की जड़ प्यार की कमी ना हो, बल्कि एक या दोनों साथियों में भावनात्मक अस्थिरता या कम सहमति हो।
अच्छा।
ये समझ बेहतर बातचीत और समाधान खोजने में मदद कर सकती है। और हाँ, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, ये मानना कि हम मिलकर रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, ये तो किसी भी रिश्ते के लिए संजीवनी बूटी है।
वाकई, ये पूरी चर्चा बहुत आंखें खोलने वाली रही है। मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि हम जिसे केमिस्ट्री या स्पार्क कहते हैं और जिसके पीछे हम अक्सर भागते हैं, वो शायद लंबे और खुशहाल रिश्ते के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि साथी का स्थिर और दयालु स्वभाव। ये थोड़ी कम ग्लैमरस बात है, पर ज़्यादा सच्ची लगती है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ये किताब हमें लाचार महसूस कराने के बजाय सशक्त महसूस कराती है। ये कहती है कि प्यार और खुशी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, जिसका इस्तेमाल करके हम बेहतर चुनाव कर सकते हैं और ज्यादा संतोषजनक रिश्ते बना सकते हैं। ये एक उम्मीद जगाती है, लेकिन वो उम्मीद यथार्थवादी है, हवा हवाई नहीं।
बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
हमने आज साथी चुनने में तर्कसंगतता, व्यक्तित्व के गुणों को प्राथमिकता देने और ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की बात की। जरा सोचिए, क्या ये सिद्धांत जीवन के अन्य महत्वपूर्ण रिश्तों, जैसे कि गहरी दोस्ती निभाने में या अहम पेशेवर साझेदार चुनने और उनके साथ काम करने में भी उतने ही कारगर साबित हो सकते हैं?
विचार करने लायक बात है।
यकीनन।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।